एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी किताब जो सिर्फ व्यापार या टेक की दुनिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम भविष्य कैसे देखते हैं और कैसे बनाते हैं।
हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं पीटर थेल की शून्य से एक, नवीनता द्वारा एकाधिकार यानी 0 to 1 की।
और पीटर थेल कोई आम लेखक या विचारक नहीं है?
नहीं बिल्कुल नहीं, वो पेपैल के को फाउंडर रहे हैं, फेसबुक में पहले बड़े बाहरी निवेशक थे, पैलेंटियर जैसी कंपनी बनाई, तो उनका जो अनुभव है वो जमीनी है, वो सिर्फ थ्योरी नहीं दे रहे हैं।
और उनकी पृष्ठभूमि भी काफी अनोखी है, दर्शन, कानून और यहाँ तक कि वो शतरंज के मास्टर भी रहे हैं।
हाँ, और शायद यही चीजें उन्हें एक अलग नजरिया देती हैं, वो पारंपरिक सोच को चुनौती देते हैं। ये किताब सिर्फ स्टार्टअप कैसे खोलें गाइड नहीं है,
तो ये उससे ज्यादा गहरी है।
बहुत ज्यादा। ये नवाचार पर, प्रगति पर, यहाँ तक कि भविष्य के निर्माण पर एक तरह का दार्शनिक नजरिया है। ये उन चीजों पर सवाल उठाती है जिन्हें हम अक्सर मानकर चलते हैं, जैसे क्या प्रतिस्पर्धा हमेशा अच्छी होती है।
और वो एक सवाल पूछते हैं जो पूरी किताब में बार बार आता है ना?
हाँ, वो केंद्रीय सवाल, वो कौन सा महत्वपूर्ण सच है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत हैं? ये सवाल ही आपको अलग सोचने पर मजबूर करता है।
तो चलिए इस किताब के विचारों की यात्रा में थोड़ा गहरा उतरते हैं।
हाँ
शुरुआत कहाँ से होती है? शायद प्रगति के विचार से।
हाँ बिल्कुल, थियल दो तरह की प्रगति में फर्क करते हैं। पहली एक क्षैतिज प्रगति, मतलब एक से एन तक जाना।
एक से एन, इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब जो चीजें पहले से मौजूद हैं उन्हीं को फैलाना, कॉपी करना, जैसे वैश्वीकरण, एक चीज कहीं सफल हुई उसे दुनिया भर में ले रहे।
ओके, और दूसरी?
दूसरी है ऊर्ध्वाधर प्रगति, यानी जीरो से एक तक जाना। ये है कुछ बिल्कुल नया बनाना, टेक्नोलॉजी के जरिए कुछ ऐसा करना जो पहले संभव नहीं था।
अच्छा, तो एक है फैलाना, दूसरा है बनाना।
सही, और थियल का जोर इसी जीरो से एक वाली प्रगति पर है। उनका मानना है कि दुनिया की असली तरक्की, जो टिकाऊ भी हो, वो इसी से आती है। सिर्फ वैश्वीकरण से काम नहीं चलेगा।
और फिर वो .com बबल की बात करते हैं, उस दौर से मिले सबक या शायद गलत सबक।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। .com क्रैश के बाद सिलिकॉन वैली में एक तरह की जरूरत से ज्यादा सावधानी आ गई।
जैसे?
क्या मान्यताएं बन गईं?
जैसे कि बस छोटे छोटे वृद्धिशील कदम उठाओ, बड़े सपने मत देखो, दुबले पतले रहो, ज्यादा पैसा मत लगाओ, प्रतिस्पर्धा में बस थोड़ा बेहतर करो और बिक्री पर नहीं सिर्फ उत्पाद पर ध्यान दो।
ये तो आजकल काफी आम सलाह लगती है। हाँ लगती है, लेकिन थेल कहते हैं कि ये चारों बातें शायद बड़ी सफलता के रास्ते में रोड़ा बन सकती हैं। उन्होंने तर्क दिया कि शायद इनके ठीक विपरीत करना ज्यादा सही है, मतलब बड़े साहसिक लक्ष्य रखो, प्रतिस्पर्धा से बचो और बिक्री को भी उतना ही महत्व दो जितना उत्पाद को।
ये तो काफी कॉन्ट्रेरियन है, खासकर प्रतिस्पर्धा वाले बात। हम तो हमेशा सुनते हैं कि कंपटीशन अच्छा है, ग्राहकों के लिए भी, इनोवेशन के लिए भी।
और यहीं पर थेल का सबसे विवादास्पद लेकिन शायद सबसे जरूरी तर्क आता है। वो कहते हैं प्रतिस्पर्धा हारने वालों के लिए है।
ये तो सीधी चोट है।
हाँ, लेकिन उनका मतलब यहाँ सरकारी या जबरदस्ती वाले एकाधिकार से नहीं है, वो बात कर रहे हैं रचनात्मक एकाधिकार की।
रचनात्मक एकाधिकार, ये क्या होता है?
मतलब आपने कुछ इतना नया और इतना बेहतर बनाया है कि आपके आसपास कोई सीधा प्रतियोगी है ही नहीं, आपने एक पूरी नई श्रेणी बना दी है।
जैसे वो गूगल का उदाहरण देते हैं।
बिल्कुल सही, गूगल ने सर्च में जो किया वो उस समय मौजूद चीजों से थियल के शब्दों में 10 गुना बेहतर था, इस वजह से उन्हें एक तरह का एकाधिकार मिला।
और इसका फायदा?
फायदा ये कि वो भारी मुनाफा कमा पाए और उस मुनाफे को फिर से नए बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में लगा पाए, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कारें या और भी बहुत कुछ।
और इसकी तुलना वो किससे करते हैं?
एयरलाइन उद्योग से, जहां जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है, दर्जनों कंपनियां हैं। नतीजा, टिकट सस्ते हो सकते हैं लेकिन कंपनियां मुश्किल से ही मुनाफा कमा पाती हैं। और आप देखिए, पिछले कई दशकों में हवाई यात्रा में कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आया है क्या?
ज्यादा नहीं, सीटें छोटी हो गई हैं शायद।
हाँ, तो थियल का तर्क है कि ये जो तीव्र प्रतिस्पर्धा है, ये मुनाफे को भी खा जाती है और असल नवाचार की संभावना को भी कम कर देती है, क्योंकि कंपनियां बस एक दूसरे से लड़ने में लगी रहती हैं।
तो लक्ष्य होना चाहिए एकाधिकार बनाना, लेकिन ऐसा एक अधिकार जो टिकाऊ हो।
हाँ, और यहाँ वो लास्ट मूवर एडवांटेज की बात करते हैं। पहला होना उतना जरूरी नहीं जितना कि आखिरी बड़ा सुधार करके लंबे समय तक टिके रहना।
अच्छा, फर्स्ट मूवर नहीं, लास्ट मूवर।
हाँ, और ऐसे टिकाऊ एक अधिकार की कुछ विशेषताएं होती हैं।
क्या है वो?
चार मुख्य चीजें। पहली, आपकी अपनी तकनीक, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, जो दूसरों से कम 10 गुना बेहतर हो। दूसरी, नेटवर्क प्रभाव, जैसे फेसबुक या ट्विटर। जितने ज्यादा लोग जुड़ते हैं वो उतना ही बेहतर होता जाता है।
सही है। और तीसरी?
तीसरी है पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी आपका कारोबार जितना बड़ा होता है आपकी लागत उतनी कम होती जाती है। और चौथी, एक बहुत मजबूत ब्रांडिंग। ये चारों चीजें मिलकर एक तरह की आप खाई बना देती हैं जिसे पार करना प्रतियोगियों के लिए मुश्किल हो जाता है।
ये तो हुई कि एकाधिकार कैसे बनाएं और टिकाएं, लेकिन कंपनी बनाने में और किन चीजों पर वो जोर देते हैं?
नींव पर बहुत ज्यादा जोर। थेल का एक नियम है, अगर किसी स्टार्टअप की नींव में ही गड़बड़ है तो उसे बाद में ठीक नहीं किया जा सकता।
नींव से उनका क्या मतलब है? संस्थापक टीम?
हाँ, संस्थापक टीम, उनके बीच का रिश्ता, कंपनी में हिस्सेदारी, ओनरशिप, नियंत्रण, कंट्रोल, ये सब चीजें शुरुआत में ही सही होनी चाहिए। अगर यहीं तालमेल नहीं है तो आगे चलकर दिक्कतें आएंगी ही आएंगी।
और कंपनी कल्चर, संस्कृति?
वो भी बेहद जरूरी है। एक मजबूत मिशन पर केंद्रित संस्कृति, वो पेपैल माफिया का उदाहरण देते हैं।
हाँ, पेपैल के शुरुआती लोग जिन्होंने बाद में अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई।
बिल्कुल, वो दिखाते हैं कि कैसे एक मजबूत शुरुआती टीम और संस्कृति लंबे समय तक मूल्य बना सकती है। सब एक मिशन से जुड़े हुए थे।
अच्छा, और एक और आम धारणा जिसे थियल चुनौती देते हैं वो है कि अगर आप एक अच्छा उत्पाद बनाते हैं तो ग्राहक अपने आप आएंगे।
हाँ, ये बहुत बड़ा मिथक है। थील साफ कहते हैं कि बिक्री और वितरण उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि उत्पाद, शायद उससे भी ज्यादा।
मतलब सिर्फ बनाना काफी नहीं है, बेचना भी उतना ही जरूरी है।
बिल्कुल, आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन आविष्कार हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे सही लोगों तक पहुंचाने का तरीका नहीं जानते, उसे बेचना नहीं जानते, तो वो बेकार है। उन्होंने अलग अलग बिक्री रणनीतियों की भी बात की है, वायरल मार्केटिंग से लेकर बड़ी कंपनियों को सीधे बेचने तक।
उन्होंने एक पूरे चैप्टर में क्लीन टेक सेक्टर की विफलता का विश्लेषण भी किया है, उससे क्या सीख मिलती है?
वो एक बहुत अच्छा केस स्टडी है ये समझने के लिए कि सिर्फ नेक इरादे या बड़ा बाजार काफी क्यों नहीं है। क्लीन टेक में बहुत पैसा लगा, बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन ज्यादातर कंपनियां विफल रहीं।
क्यों?
थील इसके लिए 7 सवाल पूछते हैं जो हर नए बिजनेस को खुद से पूछने चाहिए। क्लीनटेक इनमें से कई सवालों के जवाब देने में नाकाम रहा।
क्या हैं वो 7 सवाल, संक्षेप में बता सकती हैं?
हाँ।
पहला, इंजीनियरिंग क्या आपकी तकनीक वाकई क्रांतिकारी है या बस थोड़ा बेहतर? दूसरा, टाइमिंग, क्या ये सही समय है आपके बिजनेस के लिए? तीसरा, एकाधिकार, क्या आप किसी छोटे बाजार में एकाधिकार बना सकते हैं और फिर उसे बढ़ा सकते हैं?
ओके।
चौथा, लोग, क्या आपके पास सही टीम है? पांचवा, वितरण, क्या आपके पास उत्पाद को ग्राहकों तक पहुंचाने का रास्ता है? छठा, स्थायित्व, क्या आपका दबदबा अगले 10-20 साल तक बना रहेगा?
और आखिरी,
सातवां और शायद सबसे दिलचस्प, रहस्य, क्या आप किसी ऐसे महत्वपूर्ण सच या अवसर पर काम कर रहे हैं जिसे ज्यादातर लोग नहीं देख पा रहे हैं?
ये रहस्य वाली बात ही उनकी मूल सोच से कैसे जुड़ती है?
यह उनकी सोच का केंद्र है। उनका मानना है कि दुनिया में अभी बहुत से रहस्य हैं, ऐसे अनसुलझे सवाल, अनदेखे अवसर। महान कंपनियां अक्सर इन्हीं रहस्यों को उजागर करके बनती हैं। ये वही विपरीत सोच, कंट्रेरियन थिंकिंग है। आपको वो देखना होगा जो दूसरे नहीं देख रहे।
तो अगर हम किताब के मूल दर्शन पर समेटें तो उसमें ये रहस्य और विपरीत सोच, रचनात्मक एकाधिकार का विचार, 0 से 1 वाली तकनीकी प्रगति, और क्या है?
निश्चित आशावाद का भी जिक्र है।
हाँ, निश्चित आशावाद, डेफिनेट ऑप्टिमिज्म बनाम अनिश्चित आशावाद,
इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म।
ये बहुत महत्वपूर्ण फर्क है,
समझाइए थोड़ा।
निश्चित आशावाद का मतलब है कि आप मानते हैं कि भविष्य बेहतर हो सकता है और आपके पास उसे बेहतर बनाने की एक ठोस योजना है। आप भविष्य को डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, जैसे अपोलो मिशन का लक्ष्य था चांद पर जाना और उसके लिए एक पूरी योजना थी।
और अनिश्चित आशावाद,
इसमें आप मानते तो हैं कि भविष्य बेहतर होगा पर आपको ठीक ठीक पता नहीं कैसे, तो आप बस चीजों को चलने देते हैं या बहुत सारी अलग अलग चीजों में थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं बिना किसी बड़ी स्पष्ट योजना के। थियल मानते हैं कि महान काम करने के लिए निश्चित आशावाद जरूरी है।
एक और सिद्धांत जिसका वो जिक्र करते हैं, पावर लॉ।
इसका क्या मतलब है?
पावर लॉ का मतलब है कि दुनिया में नतीजे अक्सर बराबर नहीं बढ़ते। कुछ चीजें डिस्प्रोपोर्शनेटली यानी असमान रूप से ज्यादा मायने रखती हैं। जैसे वेंचर कैपिटल में एक फंड के कुछ ही निवेश बाकी सारे निवेशों से ज्यादा रिटर्न देते हैं।
तो इसका सबक क्या है?
सबक ये है कि आपको उन कुछ चीजों को पहचानने और उन पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है जो वास्तव में बड़ा फर्क पैदा करेंगी, बजाय अपनी ऊर्जा 100 छोटी छोटी चीजों में लगाने के उस एक या दो चीज पर लगाएं जो 10x या 100x परिणाम दे सकती है। फोकस बहुत जरूरी है।
तो अगर हम किताब के तर्क में तीन सबसे बड़े वैचारिक मोड़ या निर्णायक बिंदु चुने तो पहला क्या होगा?
मेरे ख्याल से पहला बड़ा मोड़ है .com बबल के बाद जो रूढ़ीवादी सोच आई थी उसको सिरे से खारिज करना। ये कहना कि वो जो सबक सीखे गए थे छोटे कदम लो वगैरह, वो असल में गलत थे और बड़ी सफलताओं को रोक रहे थे। यहीं से वो अपनी विपरीत सोच की नींव रखते हैं।
दूसरा,
वो एकाधिकार वाला तर्क। हाँ, निश्चित रूप से पारंपरिक आर्थिक सोच को पूरी तरह पलट देना, ये कहना कि प्रतिस्पर्धा अच्छी नहीं बल्कि बुरी हो सकती है और नवाचार से बना एकाधिकार न सिर्फ कंपनी के लिए बल्कि समाज के लिए भी अच्छा है, ये इस किताब का आप कह सकते हैं दिल है। गूगल बनाम एयरलाइंस वाला उदाहरण इसे बहुत साफ करता है।
और तीसरा अहम मोड़?
तीसरा मेरे विचार में वो 7 सवालों वाला ढांचा है जो क्लीनटेक विश्लेषण से निकलता है। ये उनके दार्शनिक विचारों को जैसे निश्चित आशावाद, रहस्य की खोज, एक व्यवहारिक एक्शन लेने लायक टूल में बदल देता है। ये दिखाता है कि ये सिद्धांत सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि आप इन्हें किसी भी बिजनेस आइडिया को परखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये तो हुए व्यापार और तकनीक से जुड़े विचार, लेकिन क्या इस किताब से कुछ ऐसे सबक भी मिलते हैं जिन्हें हम अपने रोजमर्रा के जीवन में एक इंसान के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं?
हाँ, मुझे लगता है कई मिलते हैं। सबसे पहला तो है बनाने का महत्व। सिर्फ नकल करने या थोड़ा सुधारने के बजाय कुछ नया, कुछ मौलिक बनाने की कोशिश करना। ये 0 से 1 जाने वाली बात सिर्फ बिजनेस पर नहीं, जिंदगी के कई पहलुओं पर लागू होती है।
और वो विपरीत सोच वाली बात, स्वतंत्र रूप से सोचना।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। दुनिया हमें लगातार कुछ मान्यताओं को बिना सोचे समझे स्वीकार करने को कहती है। थियल हमें चुनौती देते हैं कि हम सवाल पूछें, भीड़ से अलग सोचें। जरूरी नहीं कि जो सब मान रहे हैं वो सही ही हो। छुपे हुए अवसर अक्सर वही मिलते हैं जहां कोई देख नहीं रहा होता।
निश्चित आशावाद का विचार व्यक्तिगत जीवन में कैसे लागू हो सकता है?
ये हमें सिखाता है कि हम अपने भविष्य के लिए एक विजन रखें, एक योजना बनाएं। सिर्फ उम्मीद न करें कि चीजें अच्छी हो जाएंगी, बल्कि उन्हें अच्छा बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम करें, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो या कोई व्यक्तिगत लक्ष्य। अपने जीवन का डिजाइनर बने, सिर्फ दर्शक नहीं।
और टीम और मिशन, क्या वो भी जरूरी है?
हाँ बिल्कुल। पेपैल माफिया का उदाहरण दिखाता है कि जब कुछ जुनूनी लोग एक बड़े साझा लक्ष्य के लिए साथ आते हैं तो वो क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। सही लोगों का साथ और एक मतलब वाला मिशन, ये जिंदगी में भी बहुत मायने रखता है।
और आखिर में पावर लॉ से क्या व्यक्तिगत सबक मिलता है?
ये हमें याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी में भी शायद कुछ ही चीजें, कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ काम हैं जो हमारी खुशी और सफलता पर सबसे ज्यादा असर डालती हैं। उन चीजों को पहचानना और उन पर अपना समय और ऊर्जा लगाना ज्यादा जरूरी है, बजाय बहुत सारी कम महत्वपूर्ण चीजों में बिखर जाने के। ना कहना सीखना भी इसी का हिस्सा है।
तो इस पूरी गहरी चर्चा को समेटते हुए अगर हमें 3 मुख्य निष्कर्ष निकालने हों, एक भावनात्मक, एक बौद्धिक और एक सार्वभौमिक, तो वो क्या होंगे?
भावनात्मक स्तर पर मुझे लगता है सबसे बड़ी बात यह है कि भविष्य तयशुदा नहीं है, उसे बनाया जा सकता है। ये किताब एक तरह की उम्मीद जगाती है, एक सक्रियता की भावना देती है कि हम सिर्फ दुनिया के हिस्से नहीं हैं, हम उसे आकार दे सकते हैं अगर हमारे पास दृष्टि और दृढ़ संकल्प है। ये सशक्त महसूस कराता है।
और बौद्धिक स्तर पर क्या कहेंगे?
बौद्धिक रूप से सबसे चौंकाने वाली या कहें कि विचारोत्तेजक बात यह है कि हमारी कई स्थापित मान्यताएं, खासकर व्यापार और प्रगति को लेकर, शायद गलत हैं। प्रतिस्पर्धा की पूजा और एकाधिकार से नफरत, ये शायद हमें आगे बढ़ने से रोक रही हो। नवाचार से बना एकाधिकार शायद प्रगति का असली इंजन हो। ये हमारी सोच को चुनौती देता है।
और अंत में एक सार्वभौमिक सीख जो हर किसी पर लागू हो।
सार्वभौमिक सीख, मेरे ख्याल से ये है कि किसी भी क्षेत्र में अगर आप सच में कुछ बड़ा, कुछ स्थायी और परिवर्तनकारी बनाना चाहते हैं, तो उसका रास्ता अक्सर मौजूदा ढर्रे पर दूसरों से थोड़ा तेज दौड़ना नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नया रास्ता बनाना होता है, शून्य से एक जाना। ये सिद्धांत तकनीक से लेकर कला तक और निजी जीवन तक हर जगह लागू होता है। मौलिकता का मूल्य।
ये वाकई एक ऐसी किताब है जो दिमाग को खोलती है। ये सिर्फ कैसे करें की गाइड नहीं है, बल्कि क्यों सोचें और क्या सोचें पर ज्यादा जोर देती है।
हाँ बिल्कुल, और शायद इसीलिए ये इतनी प्रभावशाली और टिकाऊ साबित हुई है। ये आपको दुनिया को और संभावनाओं को एक नए लेंस से देखने में मदद करती है।
जाते जाते श्रोताओं के लिए वो सवाल फिर से दोहरा दें।
हाँ जरूर। सोचिए, आपकी अपनी दुनिया में, आपके अपने काम या जीवन में वो कौन सा क्षेत्र है जहां आप शून्य से एक जा सकते हैं? वो कौन सा महत्वपूर्ण सच है जिस पर शायद आप विश्वास करते हैं पर ज्यादातर लोग आपसे सहमत नहीं हैं?
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नई विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।